बाबा अभी बताया बाबा ने सीढ़ी के चित्र को चित्र जितना बनाओ
वो जड़ चित्रों के लिए तो बताया ना
है। भारत का चित्र है, भारत सबसे ऊंचा है या सबसे नीचा है?
ऊंचा।
तो ऊंचे को ऊंचाई करके दिखाना है या छोटा करके दिखाना है?
ऊंचाई करके।
जितने भी देश हैं दुनिया में उनमें सबसे जास्ती कौन से देश की महिमा है? भारत के उत्थान पतन की कहानी है, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है।
और
मतलब दोनों को लागू होता है, मतलब जड़ चित्र को भी लागू होता है और चैतन्य को भी लागू होता है।
दुनिया में असली प्रत्यक्षता चैतन्य चित्र जब ट्रांसलेट के बनेंगे तो होगी या सिर्फ जड़ चित्रों से होगी?
चैतन्य।
जो बच्चा बुद्धि होते हैं वो चित्रों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जो सालिम बुद्धि होते हैं वो चित्रों से समझते हैं क्या? जड़ चित्रों की तो जैसे उनको दरकार ही नहीं। और चैतन्य जब चित्र बनेंगे तो फटाफट लोग समझते जाएंगे, समझाने की भी जाती दरकार नहीं रहेगी।
उस समय तो समझाने की समय भी नहीं होगा।
नेहरू जी के पीछे लोग बहुत गालियां भी देने वाले थे, लेकिन जब नेहरू जी सामने आकर के भाषण देते थे तो उनके पक्ष में हो जाते थे। किस बात की कमाल है? वाइब्रेशन की कमाल है। सात्विक आत्मा बनती है तो बहुत उनको अपनी ओर कशिश करती है।
और सप्तम लागी बार मनाते हैं,
देर नहीं लगती। प्रश्न आया है, मधुबन में रहने वाली सरेंडर बहनें भी रोज चार्ट लिखें क्या?
है लिखना है क्या? ये
मधुबन है शीश महल, काय का महल है? शीश महल। शीश महल माने क्या?
सब कुछ आंखों के
शीशे का महल है, इसमें कोई कुछ भी करेगा छिपा हुआ नहीं रह सकता। कोई लिखे या न लिखे बाप के पास तो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि बाप है सबसे बड़ा आरसी, सबसे बड़ा शीशा। और सरसब्ज माना हरा भरा। सारा दिन खाते ही खाते रहेंगे तो डॉक्टर लोग वैद्य लोग क्या नियम बताते हैं? सारा दिन खाने के लिए कहते हैं या टाइम टाइम खाना चाहिए? खाने की भी जैसे हवस लग जाती है।
लेकिन
मल त्याग के लिए कहते हैं योगी एक बार, भोगी दो बार और रोगी अनेक बार। अगर सारा दिन में एक बार भी लेंगे तो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? और ज्यादा खाना वाले बीमार पड़ते हैं या कम खाने वाले ज्यादा बीमार पड़ते हैं? आजकल खाने वाले ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। भूख से मरने वालों की जनसंख्या तो बहुत थोड़ी है।
और बाबा वो माता जी पूछ रही है वो शूर संहार मुर्दा के लिए बोलते
हैं,
शूर संहार करके वो मुर्दा नु आत्म गमीना
कार्तिकेय को ऐसा क्या कहते हैं
मुर्दा शूर संहार मनाते
हैं ये पशु को संहार किए
है
उसके लिए
दीवाली
का टाइम
आया उनका मारा। हाँ। वो क्यों बताते हैं? वो तो दीपावली का बाद में 7 दिन का बाद में बहुत उसका पूजा होते हैं तमिलनाडु पूरा तो वो पूजा होते हैं।
हाँ।
वो मुर्गा को उसको मुर्गा बोलते हैं तमिलनाडु।
कार्तिकेय है वो 6 मुखों वाला है। ऐसे ये तो 2 मुहा है, 2 मुंह से बात करता है, 2 तरह की बात करता है। लेकिन कार्तिकेय को कितने मुख है? 6 मुख। जो मुख्य मुख्य धर्म है मठ पंथों को छोड़ दिया जाए तो 6 ही मुख्य धर्म है जो विधर्मियों की लिस्ट में है। तो शंकर जी को जो विश्व पिता है उनको 2 प्रकार के पुत्र हैं। एक है देवताओं का मुखिया गणेश और दूसरा है कार्तिकेय। इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन मुस्लिम सन्यासी और सिख ये 6 धर्मों का मुखिया 6 मुखों से बात करता है। जितने भी विदेशी हैं वो स्वदेशियों के मुकाबले ज्यादा समझदार हैं या कम समझदार हैं? ज्यादा समझदार हैं। इसलिए बाप को जल्दी पहचान लेते हैं, बुद्धि के तीखे हैं, परंतु जल्दी पहचानने के बावजूद भी जल्दी का काम शैतान का कहा जाता है। पूरा नहीं पहचान पाते, जैसे मुर्गा सवेरे सवेरे जल्दी उठता है और बांग लगा के सबको जगा देता है फिर बाद में खुद सो जाता है। तो ऐसे ही कार्तिकेय का पार्ट है। एडवांस ज्ञान की शुरुआत में शिव का डमरू डमडम बाजे अगम निगम के भेद खोले ऐसे पत्ते ढेर के ढेर बना करके चारों तरफ गजगोर कर देता है ज्ञान की और बाद में खुद सो जाता है। उसकी यादगार मनाई जाती है भक्ति मार्ग में। और
कोई पुरुषार्थ करके 21 करोड़ के लिए महाराजा बनते हैं कैसे?
यथा राजा तथा प्रजा। वहां जो भी होते हैं वो सब ऊंची स्टेज वाले होते हैं। 21 जन्म की सुख शांति साहब के पास होती है। बाकी असली रिजल्ट तो द्वापर कलयुग में आता है। सत्युग त्रेता में तो कोई देखने वाला नहीं, समझने वाला नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं। हिस्ट्री कहां की बनती है? द्वापर कलयुग की बनती है। यहां ऊंच और नीच हो जाता है। और
बाबा अभी जो कार्तिकेय का शूटिंग का है ना, वो 76 से 80 दिल्ली में उस समय चला था।
उस समय नहीं है,
उस समय भी
भारतवासी कुंभकर्ण अभी भी सो रहे हैं या जाग गए हैं? अभी भी सोए हुए हैं। और
एडवांस क्वालिटी की शुरुआत का है ना, इसलिए 76 के बीच का समय का बात है।
हाँ जी, हाँ जी। उनकी पैदाइश है जो इतने सब दक्षिण भारत में बैठे हुए हैं, उत्तर भारत के अभी भी सो रहे हैं। खुद सो गया और बहुतों को जगा दिया।
उत्तर भारत में भी थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, थोड़ा थोड़ा जग रहा है।
हाँ, बोला तो है यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। और
हर स्टेट में हर मातृभाषा है, जिसका मातृभाषा ही हिंदी है वो कौन सा स्टेट है? जो एग्जाम्पल है गुजरात में गुजराती भाषा तो
जैसे उत्तर भारत में यूपी है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, इन सबकी भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। हरियाणा है और
बाबा त्रेता के अंत में अर्धविनाश कहा जाता है ना।
हाँ जी,
वहाँ तो 8-10 करोड़ की संख्या रहता है।
हाँ जी,
आत्माएं। तो त्रेता के अंत में विनाश होने के लिए वहाँ कोई माया के वश होकर पाप तो नहीं करता है, फिर वह विनाश क्यों होता है?
जब देवता ने बाम मार्ग में गए तब विनाश हुआ।
तो द्वापर में जाता है ना?
हाँ, द्वापर जैसे ही बाम मार्ग में जाते हैं देवताएं,
मतलब द्वापर का वाइब्रेशन त्रेता के अंत में ही आ जाता है।
आ जाता है, ढेर की ढेर आत्माएं दूसरे धर्म की उतर पड़ती हैं।
तो वहाँ अभी तो देर प्राण नष्ट भी होता है क्या?
बिल्कुल होता है, प्राण नष्ट नहीं होते, प्राण माने आत्मा, शरीर नष्ट होते।
उस समय भी थोड़ा सा जो सच्चे रहता है वो बच जाता है। उस समय भी जो सच्चे है वो बचते हैं द्वापर की शुरू।
ये बात में ही आधी कलाओं वाली रह गई तो तत्व में भी आधी सात्विकता रह जाती है। वो सात्विकता का तब पलड़ा जब हल्का होता है तो डावाडोल हो जाता है।
खाता है तो प्रसाद करते हैं ना, पहले कौवा को खाना खाते हैं।
सारी जो यादगार है वो कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में कौए के रूप में पाठ बजाने वाली आत्माएं कौन सी हैं? जो पाँव पाँव करके गंद खाने वालों को इकट्ठा करती है। बचा खुचा सुख भोगती है, काग बिस्ता समान। कौआ क्या खाता है? तो जो आर्य समाज वाले हैं, वो ही आत्माएं यज्ञ की सत्ता हाथ में ले लेती है। बेसिक नॉलेज में और जब भोग लगाते हैं तो साकार में कौन माल खाते हैं? सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश खावेंगे या साधारण खावेंगे? सत्ताधीश। सारा माल हप कर जाते हैं, पहले पहले उनको ही आमंत्रण मिलता है। अभी भी यज्ञ में शासन करने वाला कौन सा वर्ग है? जो बाहर की दुनिया में है वही अंदर की दुनिया में है। जैसे बोला गांधी मरा, राजकोट की तरफ कोई बड़े कांग्रेसी साहूकार के यहां जाकर जन्म लिया होगा। तो जो बाहर की दुनिया का गांधी था वो कौन से वर्ग का था? कांग्रेसी वर्ग का, आर्य समाजी था। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में टैली होता है। बाहर की दुनिया में जो होता है वो अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी हो रहा है।
नॉर्थ में कोई भी मरता नहीं कबर, वो मुर्दा को स्मशान में लेते जाते ना कब्रिस्तान में, तब वो ऐसा वो मोड़ देते पूरा शरीर को, राम नाम करते हैं, राम नाम करते हैं बोलते हैं। तो इसका मतलब
जब दुनिया का अंत होता है तो सारी दुनिया को पता चल जाता है सारे झूठे हैं, कौन सच्चा है? एक राम ही सच्चा है जो राम राज्य लाता है, और बाकी तो सब रावण संप्रदाय बन जाते हैं। तो राम नाम सत्य है, ये अंत समय की गायन है। और मुर्दे को शमशान घाट में जब ले जाते हैं शमशान घाट में पहुंचते ही पांव शहर की ओर कर देते हैं और सर शमशान घाट की ओर कर देते हैं। तो ये दुनिया भी जैसे शमशान घाट है, अभी दुनिया की बुद्धि बदलने वाली है, नहीं बदलेगी तो धर्मराज के डंडों से बदल जाएगी। सबकी बुद्धि में बैठेगा कि अब परम धाम घर वापस जाना है। बुद्धि कहाँ लगानी है? परम धाम घर की ओर बुद्धि लगानी है। और ये दुनियादारी का जो शहर है उसको लात मारनी है। जैसे कृष्ण पहले पत्ते के लिए चित्र में दिखाया है, हाथ में स्वर्ग का गोला, मन बुद्धि रूपी हाथ में स्वर्ग का गोला और पांव में नरक का गोला।
और बाबा सत्यनारायण का मंदिर यूपी में है क्या?
बिरला मंदिर है, शहर शहर में बने हुए हैं। उसमें जो नरनारायण का मंदिर है वही तो सत्यनारायण का मंदिर है।
सत्यनारायण नाम से मंदिर
बनी। जब सत्य तैयार हो जाता है तो मंदिर बनाने की दरकार नहीं रहती है। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा और मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब टूट जावेंगे।
बेंगलुरु में एक मंदिर है तो
है,
बेंगलुरु में तो सत्यनारायण का मंदिर है।
इतने साल पुराना
नया है।
जब तो जब संगम युग होता है तो उन्होंने भी बना दिया।
बाबा आंध्रा में बहुत फेमस मंदिर है सत्यनारायण की मंदिर, इसमें एक तरफ उनका पत्नी लक्ष्मी, एक तरफ शंकर का मूर्ति दिखा
है।
बहुत पुरानी मंदिर।
कहाँ है?
अन्नवरम। आप घूमते रास्ता विशाखपट्टनम देखा भी होगा। कहाँ है? बाबा रावण को तो जला, लेकिन आजकल तो जोधपुर में रावण को तो पूजा कर रहे ना।
कहाँ?
जोधपुर में अभी भी बहुत पूजा कर रहे हैं।
नाम क्या है उस पुर का? युद्धपुर नाम है या योगपुर नाम है? तो युद्ध करना अच्छा है या याद करना अच्छा है? याद करना अच्छा नहीं है? याद करना अच्छा है और युद्ध की स्टेज में रहना अच्छा नहीं है। जो आत्मा संगम युग में युद्ध की स्टेज में रहते रहते शरीर छोड़ती है वो युद्धपुर की वासी है। जरूर रावण की पूजा की होगी। ऊंचते ऊंचे बाप को भूल गए होंगे और देहधारी गुरुओं को पकड़ लिया होगा। वो तो बाहुबल की लड़ाई लड़ना ही सिखावेंगे।
बाबा टीवी में लाइव इंटरव्यू चल रहा है, बाबा को ऐसा पूरा दुनिया देख सकते
हैं?
लाइव टीवी इंटरव्यू टीवी में सब चैनल में ऐसा देख सकते बाबा को?
दिल्ली में तो बोला है, एक दिन टेलीविजन में भी तुम बाप को देखेंगे कि बाप मुरली चलाए रहे हैं, उनकी आवाज भी सुनेंगे। जैसे आजकल चैनलों में आता है बड़े बड़े नेताएं तुरंत का तुरंत भाषण करते जाते हैं, तुरंत का तुरंत 15 अगस्त को टीवी में डायरेक्ट समाचार आता जाता है। कोई बड़ी बात हो गई क्या? जब प्रत्यक्षता होगी तो टीवी में भी होगी, रेडियो में भी होगी, इंटरनेट में भी होगी।
बाबा वो पूछ रहा है अभी कर सकता है क्या? करके
अभी कैसे कर सकता है?
उनका लड़का तो टीवी चैनल पे एक भाई को जानते हैं, एक भाई को टीवी चैनल में है ना।
पहले खुद तो समझे,
समझा रहे करके बता रहे।
जब खुद नहीं समझेगा तो डालेगा कैसे? उसके ऊपर भी तो कोई और सरपरस्त है, उनको क्या समझावेगा?
पहले तो 7 दिन का कोर्स तो करना पड़ता है ना।
हाँ जी, फोर्स भी करे फिर फोर्स भी आए।
फोर्स
का कोर्स
ना। और बाबा अभी मुरली में आए ना
है,
मुरली में बताए ना, बहन राखी बांधती है पैसों के लिए, तो ब्राह्मणों को समय कुछ भी नहीं देते थे राखी बांधने
के बाद। ब्राह्मणों को? यहाँ ब्राह्मण कौन है, साकार है या निराकार? उसको तो विश्व की भाषा ही मिलती है, थोड़ी थोड़ी सब से मिलती है, तो विश्व की भाषा ही हो गई ना। और
नींद का अर्थ क्या है? नींद का अर्थ
छेद हो जाता है तो सब निकल जाता है।
बाबा ब्रह्मा की सोच जब गुजरात आदि में प्रवेश करती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश करती है, लेकिन जब वही सोल प्रजापिता में प्रवेश करती है तो बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती है, तो फिर वो सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है? बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती है ना।
जब परमधाम में आत्मा जाती है तो सूक्ष्म शरीर कहाँ चले जाते हैं?
वो तो सूक्ष्म शरीर स्टेज की बात
है,
वो तो स्टेज की बात है।
हाँ जी, तो ऐसे ही जैसे हमारी व्यवस्था बनती है साकारी आकारी और निराकारी, जब निराकारी बनती है तो आकारी स्टेज कहाँ चली जाती है, मर्ज हो जाती है। जैसे कोई साकार शरीर छोड़ता है तो साकार शरीर की आकृति तो वही रहती है, सूक्ष्म शरीर वैसा ही दिखाई पड़ता है ना, कि आकृति बदल जाती है, वैसी ही आकृति रहती है। तो साकार शरीर काय में मर्ज हो गया, सूक्ष्म शरीर में मर्ज हो गया, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में मर्ज हो जाता है।
बाबा एक मंदिर में आया, तुम कोई भी काम करने के लिए कभी मांगो मत, मतलब किसी सेवा के लिए किसी को बोलना भी वो भी मांगना हो जाता है।
सहज मिले सो दूध सम,
पता नहीं वो बात करना,
मांग लिया तो पानी, तो पानी की दुनिया बनानी है या क्षीर सागर बनाना है, क्षीर सागर बनाना है। मांग मांग करके मेहलवानियां इकट्ठी कड़ी कर ली तो स्वर्ग नहीं बनेगा, पानी की तरह बह जाएगा।
मारे पैसों तो बस सेवा कुछ काम,
कुछ भी हो,
कोई बेसमझी हो तो समझा जाए, कोई बेसमझी है तो समझाना पड़ता है ना, ऐसा करो।
हाँ,
बोलना ही पड़ता है ना, किसी को पता ना सेवा करना है तो हम बोलना ही पड़ता है, मांगना होता,
मांगना बात अलग,
इस भाव में मांगना आता है,
और समझाना बात अलग। सबसे जास्ती समझाता कौन है, तो वो मांगता है आकर के,
अभी मोहल्ले में आए
क्या,
फिर कल अम्मा शरीर छोड़ने के बारे में
पलट जाता है, उल्टा हो जाता है।
नहीं, मम्मा शरीर छोड़ दिया उसके बारे में,
शरीर जब तक होता है तो बंधन होता है, स्थूल शरीर का बंधन छूट जाता है तो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। बहुत कुछ
तमा वर्ण का मीनिंग
वो तो बताया,
वो उड़ गया
कि मम्मा मम्मा जो मम्मा के पीछे देहधारी के पीछे लगे हुए थे वो सब टूट पड़े तो उल्टे हो गए ना। मम्मा ने उनको कुछ सहयोग किया क्या, लौकिक दुनिया में भी मेरे संबंधी मेरे 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 करते रहते हैं, लेकिन संबंधी शरीर छोड़ जाता है तो कोई कोई याद करता है क्या, कोई कोई याद नहीं करता।
बाबा कोई भी 16,000 एक समय राजाओं के परिवार के अंदर भी आएंगे क्या, 16,000 जो एक समय राजाओं के परिवार में आते हैं क्या, बताइए।
16,000 त्रेता के अंत तक संख्या पूरी होती है, जो राज परिवार के अंदर जन्म लेने वाले हैं उनकी।
माना ये द्वापर से कुछ भी गिनती पे नहीं आते, केवल त्रेता
द्वापर की माला थोड़े ही है। हाँ, द्वापर युग में वो आत्माएं जाएंगी, परंतु पुरुषार्थ करने की रफ्तार उनकी वो ही रहेगी जो उन्होंने संगम युग में धारण की है। जिन्होंने माला में आने का पुरुषार्थ किया है वो वहां भी संगठित होते रहेंगे, संगठित करते रहेंगे। जिन्होंने यहाँ माला में से संगठन में से छिटकने का पुरुषार्थ किया है, भागने और भगाने का पुरुषार्थ किया है, वो वहां भी भागते रहेंगे और भगाते रहेंगे, भारतवासियों को धोखा देते रहेंगे।
द्वापर कली में अनेक राजा ही आते हैं ना, फिर उन लोगों का शूटिंग कब होता है राजा? द्वापर कली में अनेक देशों में भारत में बहुत राजा है, फिर उन लोग को कुछ शक्ति राजा
बनने, वहाँ कोई राजा बनने की पढ़ाई होती है क्या? कंट्रोलिंग के संस्कार कोई भरता है क्या? ये कंट्रोलिंग करने के संस्कार, स्वाधीनता के संस्कार आत्मा में कहाँ भरे जाते हैं? संगमियों में भरे जाते हैं। 21 जन्म के संस्कार बाप आकर के भरते हैं, और 21 जन्म के आधार पर जो प्रैक्टिस पड़ जाती है वो प्रैक्टिस का मात्रा द्वापर युग से कलयुग तक चलता रहता है। कोई में ऐसा मादा होता है कि एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके सिपाही से सम्राट बन जाता है।
माना कि राम वाले आपको वहां भी माना जाता
है,
फिर इतना और भी बहुत राजा है, माना वो भी सत्य प्रथा में आने वाले ही राजा बनाएंगे।
भारत के राजा हैं, भारत का राज परिवार है, और विदेशों में तो बहुत से राजाए होंगे, उनको कोई भगवान बाप आकर के थोड़े ही पढ़ाते हैं। वो अपने धर्म पिताओं से पढ़ाई पढ़ते हैं, संगम युग में उनके कंट्रोल में ही रहते हैं, परंतु वो स्वर्ग में नहीं आते।
बाबा सम्राट आत्मा ये राजा बनते हैं बोलते ना, जो सम्राट आत्मा ये जन्म जन्मांतर इष्ट में आता है ना राजा है, तो वो सिर्फ भारत की राजा ही है, तो
भारत के राजाओं की बात कहानी है।
तो विदेश की राजा है ये सम्राट में नहीं आते,
उनकी 108 की माला होती है क्या? उनकी भी माला तो होती है लेकिन 108 की माला नहीं होती है।
बाबा ने कहा है ना सब अलग अलग माला बनाएंगे,
वो भी यहाँ के बात, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं यहाँ के वो ही आकर के फिर अपने तरीके की माला तैयार करते
हैं। ये राजा है, सभी सारी दुनिया में राजा ही बने ना, ये तो वो संस्कार कहाँ से बना है, ये संस्कार कहाँ से भरा है ना, तो इधर ही से भरके हो गया।
तो दुनिया में जो राजाएं बने हैं, विदेशों में जो राजाएं बने हैं, वो विदेशी संस्कृत से प्रभावित होकर के बने या भारतीय संस्कृत से प्रभावित होकर के बने? बस उन्होंने पढ़ाई दूसरों से पढ़ना शुरू कर दी।
बोला ये सम्राट आत्मा जो है जब राजा बनेंगे तो भारत में ही बनेंगे,
भारत के राजा है,
तो इनका भी जब
लेकिन संस्कार अलग अलग होते हैं। बहुत से राजाएं ऐसे होते हैं जो विदेशों से बहुत ही प्रभावित हो गए।
आजकल उसमें होता है वो 108 के नहीं आते होंगे,
108 के नहीं आते, 12-12 के ग्रुप हैं, 12-12 के 9 ग्रुप हैं, तभी तो माला बनती है। उन 9 ग्रुप्स में से जो मुखिया है वो ही तो रतन है। कोई हीरो की माला है बारह की, कोई माणिक की माला है, कोई पन्ना की माला है, कोई मूंगा की माला है, अलग अलग ग्रुप हैं अलग अलग धर्मों के।
वो राजा है वाजा है।
हाँ जी, ब्राह्मणों की नौ पुरियां हैं तो नौ प्रकार की देवताएं भी हैं, नौ नारायण भी हैं, हरेक की अपनी अपनी डायनेस्टी, अपने अपने प्रकार की प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा।
माना ये सेवाट आत्मा ये जो है वो कभी भी विदेश में जाकर राजा नहीं बनेगा,
भारत में ही विदेशी आकर के विदेशीयता के संस्कार छोड़ देते हैं, भारतवासियों को ही विदेशियों का संग का रंग लगता है।
हाँ।
तो विदेशी जैसे बन जाते हैं। कोई ग्रुप ऐसा भी होता होगा जो विदेशियों से अंत तक भी प्रभावित नहीं होता, लेकिन आखिरी जन्म में आकर के माया साहब को लोड़ा खिला देती।
सवाट में ये ऐसा अलग अलग लोग।
हाँ जी, ये माया का ही तो पसारा कहेंगे कि विदेशियों के आक्रमण हुए और भारत के राजाएं आपस में लड़ते मरते रहे। जानते थे कि हम बिखरे हुए हैं तो हमारी शक्ति छीण हो चुकी है, अगर इकट्ठे हो जाए तो हम मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुकाबला नहीं कर सकते।
इकट्ठा होने
माता जी पूछ रही है, संगम का रचना का जोड़ी होता है ना, वो अंत तक वही जोड़ी रहेगा?
जो आदि में सो अंत में, ये नहीं कहा अंत तक जोड़ी ही रहती है। आदि में जोड़ी है तो अंतिम जन्म में भी वो जोड़ी प्रत्यक्ष होती है, बीच में बदलते जाते हैं 21 जन्मों के बाद।
बेघरी का लगा एकदम बेदखल करेगी,
निराकारी का लगाव एकदम उत्थान करेगा और देहधारी का लगाव एकदम सत्यानाश करेगा।
बाबा अभी बाबा मुरली में भक्ति जितना कम करते हैं उतना ज्ञान भी कम उठाते हैं और जितना ज्यादा उठा
भक्ति करते हैं
ज्ञान भी ज्यादा उठाते हैं, ऐसा कहा ना। और जो अभी कई आत्माएं ऐसा है भक्ति ज्ञान में आते हुए भी भक्ति संस्कार मरे हैं, तो उसको भक्ति संस्कार पूरा होने के बाद तो वो ज्ञान लेगा, ये सब वो पूरा भक्ति करते करते सीढ़ी पूरी तरह से नीचे उतरना है ना, उतरने के बाद ही तो वो उनको ज्ञान मिलेगा। तो जब उसको ज्ञान का फल मिलने के लिए तो अंत तक वो भक्ति करते रहे तो ज्ञान का फल कब मिलेगा, तब तक विश्व परिवर्तन हो जाएगा।
जहां ज्ञान दिन है वहां भक्ति रात का नाम निशान नहीं, और जहां भक्ति की रात है घोर अंधेरी वहां ज्ञान दिन का नाम निशान नहीं। ज्ञान का प्रकाश जब हो जाता है तो आत्मा दुखी नहीं हो सकती। इसका मतलब अभी दुखी और सुखी दोनों प्रकार के वाइब्रेशन चल रहे हैं या सिर्फ सुख के ही सुख के वाइब्रेशन चलते हैं?
दोनों।
इसका मतलब सभी के अंदर कुछ न कुछ भक्ति के संस्कार हैं।
وہ پورا ہونے کے بعد سب کا پھل ملے.
ہاں جی
بابا, دل کو دل سے راحت ملتا ہے.
ہاں جی
اچھا سے بتائیے.
دل جہاں اٹک جاتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنے میں اس کو مزہ آتا ہے, اوروں کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ نہیں آئے گا. اور جس کا دل کہیں بھی نہیں اٹکے گا اسے کوئی میں مزہ نہیں آئے گا. راجائی بھی ایک جیسی اور کنگالیت بھی ایک جیسی. راجائی میں ہوگا تو بھی ایک کو یاد کرے گا, اور کنگال کا جیون بتائے گا تو بھی ایک کو یاد کرے گا. پشو پکشی ہوئے ان کا بھی دل جانتا ہے کہ کون ہمارا سہیوگی ہے, ہتیشی ہے, اور کون ہمارا دشمن ہے. یہاں پھر الپکال اور دیرگھ کال کی بات ہے. جو الپگیا ہے وہ الپگی کو پکڑ لیتے ہیں, راحت من ہے. جیسے اکال پڑتا ہے تو سرکار راشن کی دکانیں کھول دیتی ہے تو تھوڑی راحت ملتی ہے, ہاں تھوڑا سکھ مل جاتا ہے, تھوڑا دھاڑس بن جاتا ہے. نہیں ارے دل بھی تو کوئی چھوٹا ہوتا ہے, کوئی بڑا دل ہوتا ہے, یہ سب دل ایک جیسے ہوتے ہیں. ایک دل والا باپ ہوتا ہے تو زیادہ راحت کہاں ملے گی. دل لگنے کی بات ہے. دل لگی گدھی سے تو پری کیا چیز ہے.
دل لگی گاڈ سے تو پری کیا چیز ہے.
وہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے, ایسا گائن بھی نہیں ہے.
بابا ابھی واڑی میں بابا نے کہا ہے مہارتی جب غلطی کرتے ہیں تو اس سمے اس کو مہارتی کہتے ہیں کیا؟
نہیں.
تو پھر اس سمے مہارتی سمجھ کر کے ان لوگوں کو دوسرے لوگ فالو کرتے ہیں, تو وہ مہارتی سمجھ کر کے وہ مہارتی کا نام کو کیوں کلنک لگاتے ہیں؟ ایسا پوچھا ہے بابا.
ٹھیک ہے, مہارتھی نہیں ہے
اس سمے. اسی طرح سے شوٹنگ کے حساب کو کہا گیا ہے, جب ہم ستو پردان رہتے ہیں ستیہ تریتا ایک کا شوٹنگ ہو جاتا ہے. جب غلطی کرتے ہیں یا تو دوپہر کا ایک کا شوٹنگ ہو جاتا ہے.
یہ بتائیں تھوڑے ہی غلطی کرتے ہیں, من سے غلطی کرتا ہے منشیہ مانے من والا. من ہوتا ہے چنچل, چنچلتا ہوتی ہے تو غلطیاں ہوتی ہیں, بھولے ہوتی ہیں. دیوتائیں تو جتیندری ہوتے ہیں, سب سے بڑی اندریہ ہے من. من کے آدھار پر سب اندریاں کام کرتی ہیں, سب اندریوں کا راجا ہے من. मन को जीत लिया, जगत को जीत लिया।
फिर मन रूपी ब्रह्मा कहा है ना, तो
ब्रह्मा ही तो सबसे ज्यादा बड़ा घोड़ा है, उसी को तो लगाम लगानी है।
ठीक है बाबा, तो उसी के ऊपर भी शंकर बुद्धिमान बुद्धि शंकर को जब बिठाया तो फिर सब लोग मन की ये चंचलता में क्यों आ जाते?
शंकर जी जो सबका बाप है मनुष्यों का, वही अगर चंचलता में आ जाए और उसको याद का पुरुषार्थ करना पड़े तो संपन्न है या असंपन्न है?
मतलब नतीजा ये हुआ, जब तक शिव शंकर एक नहीं कहला जाएंगे तब तक ये चलते रहेगा।
एक बात तो है, शिव शंकर जब एक हो जाए तो तभी तो एक हो जाए जब शंकर शिव समान बन जाए। शिव समान नहीं है इसका मतलब घोड़े पर सवार नहीं है, छलांग लगा के बैल पर चढ़ते हैं, मन हाई जंप नहीं लगेगी तब तक कंट्रोल नहीं होगा।
तो
बाबा
जी,
मुरली ने बोला है कि भगवान ने बोला है कि मैं 84 जन्म के अंत में आता हूँ, तो 84 जन्म तो हो गया 1936
जी,
फिर उसका एक अंत हो गया 76
ठीक है,
फिर दूसरा अंत कौन?
लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, कब हुआ? 76 तो उसे एक्स्ट्रा आर्डिनरी पहला जन्म कहेंगे या 84वें जन्म का अंत कहेंगे? दोनों का ही मेल है, 76 84 जन्म का अंत और पहले जन्म की शुरुआत।
शत्रु का पार्ट
है,
शत्रु का जो पार्ट है
हाँ, गुरु कहा जाता है जो सदगति करके ले जाए, और सदगति कौन सी युग में होती है? नहीं, सदगति सत्य युग में ही हो सकती है। जब तक कलयुग है तब तक सदगति नहीं, कलयुग में है सब पतित, पतित दुनिया में होते हैं, पतित पतित ही पतित, एक भी पावन नहीं, और पावन दुनिया में होते हैं पावन ही पावन।
तो सांगवी के स्वर्ग में भी सदगति नहीं
होती
है?
लेकिन संगमयुग में भी शरण संगमयुग है।
हाँ जी,
उसमें भी नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? उसका नाम स्वर्णिम कैसे पड़ गया? स्वर्ण कहते ही है सच्चे को।
बाबा ये माता जी बोलते हैं, ये माता जी कहते हैं ये कब से एडवांस में आया तो बीके में जाना छोड़ दिया, तो बीके में जाता ही नहीं, फिर पांडव कैसे कहलाएंगे?
माने बीके में जब तक जाते हैं तब तक पांडव हैं?
नहीं नहीं, ऐसा पूछने का नहीं है, उनका पूछने का ये है वहां जाके धक्का देने से तो पांडव बनेगा, इसलिए कैसा पांडव बनेगा?
दोबारा धक्का खाना शुरू कर दो, डबल पांडव बन जाओ।
बाबा मंजिल आने के बाद ही आम आना
पसंद करते,
आम है फलों की राजा, पहले मंजिल बाद में आम।
आधार नहीं होगा तो पौधा पैदा होगा क्या? ये
फिर नंबर वन नंबर टू उनको आएगा
है? क्या नंबर टू? नंबर टू नंबर थ्री अरे 100% कोई होगा तो 99% भी कोई होगा, वो तो नंबर वार तो होते ही।
तो बाबा पहले शिव शंकर होगा, बाद में लक्ष्मी नारायण होगा, बनेंगे।
शिव शंकर नहीं होगा, शंकर शिव होगा।
वही शंकर शिव होगा, क्योंकि गायन में तो शिव शंकर है।
शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, भक्ति मार्ग में दोनों को मिला के एक कर देते हैं, लेकिन हम तो नहीं कर देते एक, कि दोनों आत्माएं एक है। हाँ, शंकर शिव समान स्टेज को धारण कर लेता है,
बाद में ही ले
है
लक्ष्मी नारायण भाई।
एक बार दूसरा कैसे, एक बार कहीं सुनाए सबका
सुने सबकी और माने एक बाप की है?
करेंगे
हैं?
सब तो सुनेंगे तो करना है ना, नहीं करेंगे तो बस करेंगे
उनके आधीन हो जाओ।
पूछते
काय के लिए, हम तुम्हारी बात क्यों माने? है क्या अर्थ कैसे? अरे एक बाप की बात माने, दूसरे कोई की ना माने? हटा देंगे तो हटा दो, बाप ने तो नहीं हटा दिया। अरे कोई हमको सीट से हटा देता है तो हटा देने से क्या हमारा पद नीचा हो जाएगा? निश्चिंत रहो ना
बाबा। बाबा क्लास करते समय शॉर्ट एंड निकल के तभी प्रिंट करने से अच्छा होगा
है?
अभी क्लास बाबा का क्लास चलते समय उसी समय शॉर्ट एंड निकल के उसी समय प्रिंट करने से अच्छा होगा। मुरली मुरली
तो पहले भी होती थी प्रिंट?
नहीं अभी क्या बोल रहा,
पहले भी शॉर्ट एंड होता था।
हाँ।
शॉर्ट एंड होकर के फिर मुरली बाद में छपाई जाती थी।
हाँ। वही उसी से अभी जो एडवांस बाबा में एडवांस का जो बाबा का चल रहा है इस समय भी ऐसा शॉर्ट एंड निकल के तभी का तभी प्रिंट करने से अच्छा रहेगा।
ज्ञान भी सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो होता है। जब सात्विक की स्टेज होती है तो बड़ी फास्ट गति से विचार निकलते हैं, उस समय शॉर्ट एंड तो क्या लिखने पढ़ने वाले भी नहीं निकलते। जब साधन बढ़ते हैं तो साधना छीण होने लगती है, और जब साधन नहीं होते हैं तो साधना तीक्ष्ण हो जाती है।
वो तो ठीक है, एक एक बात क्या होता है सीडी में क्लास में हो या डिस्कशन क्लास में हो, हम सुनते समय जो प्रोनाउंसिएशन है वो समझ नहीं पाते, भाषा की थोड़ा डिफरेंस है ना, इसलिए समझ नहीं पाते। जब वो सीडी में या कैसेट में सुनते भी ये साथ में रहने से और अच्छा जो भी समझ नहीं सकते उसमें देख सकता है। भी साथ में रहने से तब जो बात समझ नहीं सकता उसमें देख सकता है, जब कभी कभी दो तीन बार हम रिवाइंड करके फिर डाला तो भी फिर समझ नहीं सकते वो बात क्या बताए।
समस्या जिनको हिंदी भाषा नहीं आती है उनके लिए है या सबके लिए?
सबको
है,
सबको नहीं है
हिंदी भाषा के, वो भी ठीक है پھر بھی ایک ایک بات پروننسیشن میں بھی فرق ہو جاتا ہے. جیسا بابا کبھی کبھی دوسری بھاشا میں بھی مثال دے دیتا ہے, کبھی کبھی سنسکرت میں بھی دے دیتا ہے, کبھی دوسرا بھی لینگویج ایک ایک ورڈ آ جاتا ہے, تب ہم وہ پروننسیشن سے سمجھ نہیں پاتے.
ہندی میں تو ہندی بھی مکس ہے بڑھیا سے بڑھیا, اور انگریزی بھی مکس ہے, اردو بھی مکس ہے, اور آل انڈیا کے سبھی ورڈنگ سے مکس ہے. جب ہے ہی شنکر جی کی بھاشا تو شنکر مانا بھاشا بھی مکس.
اسی لیے ساتھ میں لکھاوٹ بھی رہنے سے اچھا
ہے,
ساتھ میں لکھاوٹ بھی رہنے سے اچھا ہو.
چاہیے چاہیے اچھا اچھا ہونے سے تھوڑے شارٹ اینڈ سیکھ لو شروع کر.
ہم تو ٹھیک ہندی ہی نہیں جانتے, ہم کیسا جانتے ہیں.
کسی کے اندر پرشن آتے رہتے ہیں لیکن ادھر میں ثابت ہوتا ہے سمجھ کر کے اندر اندر دبا لیتے ہیں, اس کا شوٹنگ کیا ہوتا ہے؟
تو بڑا بے دھرمی ہو گیا کیونکہ وہ اپنے کو پروٹیکشن نہیں کرتا ہے, اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور دکھاتا ہے. یہ تو شو کرنے والی بات ہو گئی کہ ہم بے دھرمی نہیں ہیں, ہم تو سدھرمی ہیں, اور اندر سے پورے بے دھرمی ہیں. جو بات اندر چل رہی ہے اور اس بات کو باہر نکال کے کلیئر نہیں کریں گے تو اندر اندر اور زیادہ گھوٹالا مچائے گی نا, تو وائبریشن زیادہ خراب ہوتے رہیں گے. کہتے ہیں جو اندر ہے وہ باہر نکالو. پرشن چت ہونا اچھا ہے یا پرسن چت ہونا اچھا ہے؟ پرسن چت بننا ہے تو اندر اندر جو پرشنوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے اس کو باہر نکال دینا چاہیے.
بابا کبھی کبھی ہرم کرتے سمے کانسنٹریشن کے لیے بابا کی گانا لگا سکتے
ہیں,
کرم یوگ کرتے سمے کبھی کبھی من چنچل ہوتا ہے تو اس سمے کانسنٹریشن کے لیے بابا کا گانا لگا سکتے ہیں.
لگا سکتے ہیں لیکن اندر کوئی کوئی یہ بھاو آئے کہ ارے کوئی کیا کہے گا. بابا نے تو کہا ہے کہ جب اندر کی چنچلتا آئے, حالت خراب ہو تو گانا لگانا چاہیے, تو لوگ سمجھیں گے ارے ان کی حالت بہت خراب ہو رہی.
سمجھنے سے وہ سمجھنے سے اور ہمارا خراب بھی باہر نکلے گا.
بیسک نالج کی جب پڑھائی چل رہی تھی تب تک تو یہ بات ٹھیک تھی کیا؟
نہیں یاد کرنے کا سمجھ.
جب حالت خراب ہوتی ہے تو اچھے اچھے گیت لگا لینا چاہیے, لیکن ابھی تو فائنل پیپر ہونے جا رہے ہیں, ابھی بھی اگر ایسی اسٹیج بنے گی تو کیا حال ہوگا؟
چوبیس گھنٹہ ایک ہی کانسنٹریشن میں تو نہیں,
سب ایک جیسے تھوڑی ہے.
بابا کوئی کوئی ایسے بھی ہوتا ہے اگر پرشن پوچھے تو اپنے کو پرتیش کہاں ہوتا ہے سمجھ کر کے دوسروں کو پرشن پوچھنے کے لیے بولتے ہیں, ایسے والوں کا شوٹنگ کیا ہوتا ہے؟
ابھی تو اس کا جواب دیا,
دوسروں کو پوچھنے کے لیے بولتے ہیں نا بابا.
ایک باپ دوسرا نہ کوئی, اس اسٹیج میں رہ کر کے ہم پوچھیں گے تو ہمیں دوسروں سے کیا مطلب, دوسرے کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. کہنے والے کہتے رہے, ہم کو اپنی صفائی کرنی ہے تو اپنے اندر کا کچڑا نکال کے ہم باہر ساگر میں ڈال دیتے ہیں.
بھکتی مارگ میں جو پجاری ہوتا ہے نا, مندر میں پوجا کرتے ہیں تب پردہ لگا لیتے ہیں.
پوجا کرتے ہیں تب پردہ نہیں لگاتے, جب بھوگ لگاتے ہیں تو پردہ لگاتے ہیں. وہ بھوگ کا ارتھ انہوں نے الٹا سمجھ لیا ہے, کیونکہ بھکتی مارگ میں تو سب استھول باتیں اٹھاتے ہیں یا سوکشم باتیں اٹھاتے ہیں. استھول باتیں اٹھاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بھگوان کوئی استھول بھوگ کھاتا ہوگا. ارے بھگوان پتتوں کو پاون بنانے کے لیے آتا ہے یا تمہارا لڈو پیڑا کھانے کے لیے آتا ہے؟ پتی تو بنتے ہی ہیں کام بیکار سے. کرودھی کو پتیت کہا جاتا ہے یا کامی کو پتیت کہا جاتا ہے؟ کامی کو پتیت کہا جاتا ہے. تو وہ بھوگ لگانے کی بات ہے, اس میں پردے کی بات ہوتی ہے. باقی لڈو پیڑا کھانے کے لیے پردہ لگانے کی کیا درکار؟ اور بھگوان آ بھوکتا ہے کہ بھوکتا ہے تو بات ہی نہیں ہے.